तोरा स्वरूप रूप कहाँ सनाता कहाँ दास रघुनाथ पतित पावा कहाँ मोरा भट युगा कहाँ कबीरा एका काल कोथा गिला गौरा नटरा पाषाणे कोटि भो मथा आनाले पाशिबो आना गौरांगा गुनेरा निधि कोथा गेले पाबो गौरांगा गुनेरा निधि कोथा गेले पावो से सब संगीरा संगे जे कोइलो बिला
जोर से बोलिए जोर
से सब संगीरा संगे जे कोइलो बिला से सब संगीरा संगे जे कोइलो बिला से सब संगीरा संगे जे कोइलो बिला ते संग न पाया कांदे नरो तमोदार ते संग न पाया कांदे नरो तमोदार नरो तमोदार नरो तमोदार नरोतमोदा नरोतमोदा ते संग न पाया कांदे नरोतमोदा ते संग न पाया कांदे नरोतमोदा जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय श्रीवास ठाकुर जय श्रीवास ठाकुर श्रीवास ठाकुर जय श्रीवास ठाकुर
परमहंस परिवृजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद His Divine Grace Abhay Shanarvind Bhakti Vedan Swami Srila Prabhupada ki jai. Anant Koti Vaishnavind ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityanand Shri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Kaur Bhaktavind ki jai. Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shyam Kund Radha Kund Giri Govardhan ki jai. Ganga Mai ki jai, Yamuna Mai ki jai, Vrindadevi Tulsi Maharani ki jai, Shri Shri Radhika Raman ki jai, Shri Shri Jagannath Balli Subhadra Maharani ki jai, Shri Shri Krishna Balaram ki jai, Shri Shri Gaurataya ki jai, Samavet Bhaktavrinda ki jai. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Gauranga.
Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Bhagavanir Bhakta Jata Shivasa Pradha Tasabhar Pat Varne Sahastra Prana Bhagavanir Bhakta Jata Shivasa Pradhan Tasabhar Pat Varne Sahastra Prana Bhagavanir Bhakta Jata Shivasa Pradhan Tasabhar Pat Varne Sahastra Prana
बोले बोले
तासाबार पाद वर्ने सहस्र प्रणा भगवाने भक्त जत शिवा स प्रभा Tasabhar Pat Varne Sahastra Pranam Bhagavanir Bhakta Jata Shivasa Pradhan Tasabhar Pat Varne Sahastra Pranam Bhagavane Bhakta Jata Shivasa Pradhar Tasavar Papadne Prasra Pranam
Hare Krishna Anuvad Srila Prabhupada ke dvara. Tatpare nahi hai, sirf anuvad hai. Bhagwan ke asankhya bhakton mein Shivas Thakur agraganya hai, dhoraiye. Bhagwan ke asankhya bhakton mein Shivas Thakur agraganya hai. Main unke charan kamalon mein hajaron namaskar arpit karta hoon. Om Agyanatimurandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Mano Abhishtam Sthapitam Yena Bhutale स्वयं रूप गदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सब लोग बोली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचतत्वात्मकम् कृष्णम् भक्तरूप स्वरूपकम् भक्तावतारम् भक्ताख्यम् नमामि भक्त शक्तिकम्। श्री चैतन्य चरितामृत में शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि भक्त रूप कौन है, भक्त रूप है श्री चैतन्य महाप्रभु। भक्त स्वरूप कौन है, नित्यानंद प्रभु है। भक्त अवतार कौन है, अद्वैत आचार्य है। भक्त आख्यम कौन है, शिवास पंडित है। भक्त शक्तिकम कौन है, गदाधर पंडित है। तो ये पंच तत्व है। शिवास पंडित जीव तत्व होते हुए भी शक्ति से संचारित हैं। शाक्तवेश नारद मुनि के अवतार हैं। शिवास पंडित जीव तत्व होते हुए भी पंच तत्व के साथ खड़े हैं, यानी कि और चार तत्वों के साथ खड़े हैं। ये है अचिंत भेद अभेद तत्व सिद्धांत। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आविर्भाव के माध्यम से ही सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं कि कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहते। चारों संप्रदायों का निष्कर्ष श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रस्तुत किया अचिंत भेदाभेद तत्व सिद्धांत। यह है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। तो इस तरह से जीव तत्व होते भी पंच तत्व के इसी में आप ऑल्टर में देख सकते हैं शिवास पंडित को। तो शिवास पंडित का जो आविर्भाव है वो श्रीहट में हुआ और बाद में फिर वो नवदीप में आ गए थे, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास के उपरांत शिवास पंडित ने भी नवदीप छोड़ दिया था और फिर कुमारहाट में जाके रहने लगे। तो शिवास पंडित का घर जो है वो बहुत ही अद्भुत स्थान है और शिवास पंडित के घर में जो लीलाएं हुई हैं वो सारी अद्भुत लीलाएं हैं। शिवास पंडित का जो घर है शिवास आंगन जिसको कहते हैं, शिवास आंगन राजस्थली से अभिन्न है, राजस्थली से अभिन्न है और अनेकों लीलाएं वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने की भक्तों के साथ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन जो है वो शिवास पंडित के घर पर ही किया। आज जो भी प्रचार हो रहा है पूरे पृथ्वी में उसका जो पावर हाउस है उसकी जो नींव है श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिवास पंडित के घर पर रखी है और वहीं से पूरे पृथ्वी में पूरी सृष्टि में संकीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ है और हो रहा है और होता रहेगा। तो शिवास ठाकुर जो हैं वो हमें क्या प्रदान करने वाले हैं, हमें शुद्ध नाम प्रदान करने वाले। शिवास पंडित पंच तत्व में जो एक एक तत्व है वो हमें कुछ ना कुछ देने वाले हैं अगर हम लोग शरणागत होंगे तो, है ना। शरणागति ही एक जो है मूल्य है और जैसे हम शरणागत होंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु को रस आश्रय बताया गया है और नित्यानंद प्रभु को प्रेम आश्रय बताया गया, गदाधर पंडित को भाव आश्रय बताया गया। अद्वैत आचार्य क्या करते हैं, हमें साधना भक्ति से राग मार्ग में ले जाते हैं, वैदिक साधना से हमें राग मार्ग की साधना में ले जाते हैं। अद्वैत आचार्य की कृपा से होता है ये। और शिवास पंडित हमें, क्योंकि वो भक्त हैं शुद्ध भक्त हैं, उनकी कृपा से हमें शुद्ध नाम की कृपा मिलती है। तो इस तरह से ये पंच तत्व हैं और ये पंच तत्व जो है वहां शिवास पंडित के घर पे हमेशा संकीर्तन में भाग लेते थे और चैतन्य महाप्रभु ने अनेक लीलाएं की वहां। जैसे एक लीला क्या की, उन्होंने एक आम का बीज बोया जिससे आम का पेड़ निकल आया और उस आम के पेड़ में अनेक आम निकल आए और पूरे साल के लिए आम उगता रहा, उसमें आम आता रहा। 12 महीने भक्तों को आम प्राप्त हुआ बिना गुठली के और बिना छिलके के। आम्रघाट भी एक स्थान है जहां पर भी इस प्रकार की लीला हुई है। तो इस प्रकार खाने पीने की कोई समस्या नहीं है। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिख रहे हैं कि कृष्ण भक्तों को प्रसाद की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर हम कृष्ण भक्त बनते हैं तो। प्रभुपाद जी ने इसको साबित करके दिखा दिया पूरे पृथ्वी में, जहां कहीं कृष्ण भक्त हैं वहां प्रसाद उपलब्ध है। तो इस तरह से श्रीवास पंडित के घर में भी प्रसाद की कोई कमी नहीं है। आम का पेड़ लग चुका है, गर्मी का मौसम है, बिल्कुल सही समय है और खूब आम आप खाइए। उसमें गुठली भी नहीं है, छिलका भी नहीं है, सीधा निकालो अंदर, सीधा अंदर है ना, फ्रेश एकदम जूस। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जब गया गए थे, चैतन्य महाप्रभु गया से वापस आने के बाद उन्होंने शिवास पंडित के घर में अपना महाप्रकाश प्रकट किया था और वहां श्री चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक भी हुआ था। विष्णु के सिंहासन में श्री चैतन्य महाप्रभु बैठ गए। चैतन्य महाप्रभु जो कि निमाई के नाम से जाने जाते थे या और कई नाम थे उनके, नवदीप में अपना ऐश्वर्य दिखा नहीं रहे थे। जिस तरह से ब्रज में ऐश्वर्य आच्छादित है, ऐश्वर्य होते हुए भी ढका हुआ, इसी तरह से नवदीप में ऐश्वर्य वहां ढका हुआ है, ऐश्वर्य दिखाई नहीं पड़ता है। जरूर रूप गोस्वामी, शिल रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि एक कटोरा है और वो ऊपर से घी से ढका हुआ है, ठीक है, लेकिन घी को आप हटा दें, घी की परत अगर हटा दें तो अंदर आपको सोना दिखाई पड़ेगा। यह है ब्रजधाम, तो उसमें ऐश्वर्य भरा हुआ है नवदीप धाम में, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि भक्तों का भाव है। ऐश्वर्य का मतलब क्या है यहां पर? ऐश्वर्य का मतलब है कि भगवत ज्ञान का ऐश्वर्य नहीं होता है। ऐश्वर्य का मतलब ये नहीं कि वहां पर जो है धन नहीं दिखाई दे रहा है या फिर ऑपुलेंस नहीं दिखाई दे रहा है, ऑपुलेंट इमारतें नहीं दिखाई। इसलिए बलदेव विद्याभूषण ने, श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण ने एक ग्रंथ लिखा ऐश्वर्य कादंबनी, उनके शिक्षा गुरु श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने लिखा माधुर्य कादंबनी और श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण लिखा ऐश्वर्य कादंबनी। उसमें नंद महाराज के घर का वर्णन किया है, कितना ऐश्वर्य है उसमें अब अंदाजा नहीं लगा सकते। तो लेकिन जो जब कहा जाता है कि ब्रज में ऐश्वर्य नहीं है, इसका अर्थ यह है, या नवदीप में ऐश्वर्य नहीं है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वहां पर भगवत्ता का ज्ञान नहीं होता है। और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक भक्त जो एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित करता है बहुत नजदीकी से। और इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु का वहां पर विष्णु सिंहासन में उनको बिठा के उनको विराजमान करा के बहुत सुंदर उनका अभिषेक हुआ। और इस लेकिन हुआ क्या कि जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे भक्तों के साथ, तो आसपास के जो पड़ोसी थे वो बहुत दुखी हो गए, खासकर जो नास्तिक लोग थे और तथाकथित ब्राह्मण थे, स्मार्ट ब्राह्मण, वो बुराई करने लगे, निंदा करने लगे। एक ने कहा कि मैं तो रात भर सोया नहीं, इन्होंने जीरा हराम कर दिया हमारा, पूरी रात ये लोग चिल्लाते रहते हैं, ये लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, कृष्ण कृष्ण करके रोज जोर जोर से चिल्लाते हैं, और ऐसा करेंगे तो भगवान जो योग निद्रा से जाएंगे और पूरा संहार हो जाएगा हमारे नवदीप का, अत्याचार कर रहे हैं ये लोग। तो बाहर खड़े हुए जो नास्तिक लोग थे वो बहुत दुखी हुए, और कुछ ब्राह्मणों ने कहा कि ये तो जो है फिलॉसफी को अवॉइड कर रहे हैं और स्पेकुलेटिव नॉलेज को अवॉइड कर रहे हैं, ज्ञान के लिए ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, दर्शन को नहीं स्वीकार करते हैं, ये तो केवल चिल्लाते रहते हैं हरे कृष्णा करते रहते हैं। तो इस प्रकार जो है ब्राह्मण जो है आपस में चर्चा कर रहे थे, और कौन जानता है ये किस लिए गा रहे हैं और क्यों गा रहे हैं सब, और ये जो है शिवास और उसके जो भाई हैं सारे भाई, मुझे तो लगता है कीर्तन इसलिए कर रहे हैं ताकि अपना पेट भर सके, इनको भूख लगती है इसलिए जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं पूरी रात भर, खाने पीने को शायद मिलता नहीं ठीक से इनको। और कुछ ब्राह्मण ऐसा कहने लगे कि अगर पुण्य ही कमाना है तो मन से नहीं कमाया जा सकता क्या, उसके लिए बोलना जरूरी है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी जब लॉस एंजलिस में थे तो पास में एक वहां पे कराटे का स्कूल था, वहां से आवाज आती थी, तो उसने देखा होगा आपने आचार्य सीरीज में, तो प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद सुन रहे हैं और हंस रहे हैं, प्रभुपाद ने कहा देखो ऐसे चिल्लाने से क्या लाभ है, ऐसे चिल्लाने से क्या ये माया के प्रभाव से बच जाएंगे या भवसागर से बच जाएंगे, अगर इनको हम कहें हरे कृष्ण महामंत्र जप करो यहां मंदिर आओ तो ये लोग नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा चिल्लाना ये लोग पसंद करते हैं। तो इसी तरह से जो ब्राह्मण है वो सब इस प्रकार की चर्चाएं कर रहे थे, और ब्राह्मण ने कहा कि पूरा हमारा जो देश है पूरा जो वो सब का सब नष्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, और जल्द ही जो है ये राजा क्या करेगा, नवाब क्या करेगा, वो दो नाव भेजने वाला है, उसमें सैनिक होंगे, और राजा को पता चल चुका है कि ये जोर जोर से कीर्तन करते हैं,
प्रभुपाद कहते हैं कि किसी हिंदू ब्राह्मण ने ही जाकर जो है नवाब को बताया था, नवाब को बताया था मतलब चांद काजी को जाके बताया था कि इस तरह से कर रहे हैं। नहीं तो मुसलमान जो है वो अपने आप, उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने विरोध नहीं किया था, हमारे हिंदू ब्राह्मण ही जाके जो है शिकायत लगाए थे कि इस तरह से चिल्लाते हैं, हमारा हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा, ये जोर जोर से हरे कृष्णा कर रहे हैं, ये हमारे धर्म के विरुद्ध कार्य है, इनको रोका जाए। तो इस कारण से चांद काजी भड़का। तो इस प्रकार जो है हम जानते हैं कि शिवास पंडित के घर में कैसे चांद काजी ने अपने सैनिकों को भेज दिया था, और चांद काजी भी स्वयं आया था और उसने जो है मृदंग तोड़े, वहां पर भक्तों को भी पीटा गया। श्री चैतन्य महाप्रभु उस समय थे नहीं, मौजूद नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु जब वापस आए, चैतन्य महाप्रभु को इतना क्रोध आया है ना, उसकी ऐसी की तैसी मैं कर दूंगा आज। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जय श्री श्री राधिका रमण की, जगन्नाथ बल्ले सुभद्रा महारानी की, कृष्ण बलराम तो दिखाई नहीं देते हैं, ऐसी डिश तो जैसे भी हैं, जय तो बोल ही सकते हैं आप भी। तो कृष्ण बलराम हमें तो देख रहे हैं ना, हम उनको नहीं देख पा रहे हैं, आप देख रहे हैं, यहां से नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार जो है चांद काजी जो है उसने जो है आक्रमण कर दिया। चैतन्य महाप्रभु जो है वो बहुत नाराज हुए, उन्होंने कहा छोड़ो उन्हें, मैं चांद काजी को। उन्होंने फिर सभा, उन्होंने सबको बोला कि देखिए हमें भक्तों को एकत्रित करना है और आज चांद काजी के हम घर जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको, हम आज उसकी खैर नहीं। आप लोग डरिए मत, चांद काजी डर रहे, चांद काजी के लिए डर पैदा किया गया। चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद कहते हैं 1,00,000 लोगों को लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु चांद काजी के घर पे गए, संकीर्तन करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, चांद काजी निकलो बाहर। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु बड़े गुस्से, मशाले लेकर, सूर्यास्त हो चुका था, अंधेरे में चारों तरफ मशाले नजर आ रही थी, 1,00,000 लोगों की मशाले नजर आ रही थी, और चैतन्य महाप्रभु सिंह की तरह जो है बड़ी तेजी से चांद काजी के घर जा रहे थे। तो इस प्रकार जो है ये अब आगे घटना हम नहीं बताएंगे, क्योंकि अभी शिवास पंडित पे ही फोकस किया जा रहा था, तो फिर वो स्टोरी और कहीं चली जाएगी, है ना। तो फिर शिवास पंडित के घर पे ये हुआ, चांद काजी ने आकर खोल भंगार डंग, स्थान का नाम क्या है, खोल भंगार डंग, यानी कि उस स्थान में खोल को, मृदंग को तोड़ा गया। तो इस प्रकार कई लोगों ने यह भी कहा कि हमें तो शिवास, मैंने तो पहले ही कहा था आपको कि शिवास पंडित के घर को जो है गंगा जी में डाल देना चाहिए, घर समेत इन लोगों को उठाने जो है गंगा जी में डाल दो, लेकिन मेरी बात सुनी नहीं किसी ने। आप सबको लगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन मैं बहुत सीरियस हूं इस बात के लिए, गंभीर हूं मैं इस बात के लिए। आप लोगों ने एक्शन नहीं लिया, मैंने पहले भी कंप्लेंट किया था आप लोगों को, और आप देखो क्या हालत हो रही है, ये लोग जोर जोर से चला रहे हैं, हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं, ये क्या ठीक है बताइए। तो और हम अगर इनको निकालने की कोशिश करेंगे, ये शिवास तो भाग जाएगा अपने भाइयों के साथ, और नुकसान किसका होगा, हम सबका नुकसान होगा। तो इस प्रकार की बातें चल रही थी, और आसपास के जो ब्राह्मण हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, स्मार्ट ब्राह्मण हैं, वो सब शिवास पंडित का विरोध कर रहे थे। ऐसे में क्या हुआ कि एक जो ब्राह्मण था, गोपाल चापल, प्रभुपाद ने लेकिन भागवत के इंट्रोडक्शन में जो चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनाई है भागवत शुरू करने से पहले, उसमें गोपाल और चापल ये दो व्यक्ति बताए हैं, ये दो लोग बताए हैं प्रभुपाद जी ने, गोपाल और चापल, क्या जो भी है हम लोग समझ लें कि कोई था उधर। गोपाल चापल जो है उन्होंने क्या किया, योजना बनाई कि शिवास पंडित को बदनाम कर देंगे, बदनाम करेंगे तो अपने आप ही यहां से निकल जाएंगे लोग, है ना। और उन्होंने क्या किया, कुछ सामग्री एकत्रित की जो काली की पूजा के लिए होता है, और ऐसी सामग्री वहां रखी, मदिरा इत्यादि, सिंदूर वगैरह वगैरह, लाल रंग के फूल, और वहां पे सारा जो है दरवाजे के बाहर रख दिया। सुबह प्रातःकाल शिवास पंडित ने दरवाजा खोला तो उन्होंने कहा, अरे ये देखो, सुनो सुनो, आप सब आओ, आप सब सोच रहे हो कि मैं कृष्ण भक्त हूं, मैं तो काली का उपासक हूं, देखो 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 कितना ढोंग भरा हुआ है मेरे अंदर। तो इस शिवास पंडित आगे वो बाहर आके चिल्लाने लगे, तो कुछ भक्त लोग समझ गए, कुछ भक्त थे जेन्युइन भक्त थे, वो समझ गया कि ये किसी की चाल है, किसी ने और किसी ने अगर ऐसा किया है, अपराध किया है शिवास पंडित के चरणों में, जरूर भुगतेगा। तो इस प्रकार से गोपाल चपल को 3 दिन के भीतर जो है कोड़ का रोग हो गया, लेप्रसी। कई बार पूछते हैं कि प्रभु जी आजकल कोढ़ का रोग क्यों नहीं होता है। आज के समय अगर कोढ़ का रोग होगा तो फिर हम सब भक्ति करने नहीं आएंगे, फिर भाग जाएंगे सब, क्योंकि सामान्य प्रचार रुक जाएगा फिर, है कि नहीं। इसलिए रिएक्शन बाद में मिलेगा आपको, चिंता ना करो। तो इसलिए हम सोच रहे हैं, ओ प्रभु जी इन्होंने तो अपराध किया था इनका, उनको तो कुछ हुआ नहीं, इसका मतलब ये उस लेवल के वैष्णव नहीं है। नहीं, उस लेवल के वैष्णव हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है, ताकि प्रचार का आंदोलन चलता रहे। नहीं तो क्या होगा, गलत पब्लिसिटी हो जाती है फिर, ओहो इस कौन संस्था में कोढ़ के रोगी बहुत सारे हैं। अब सुनो इस बात को, तो इस कारण से जो है ये सुषुप्त अवस्था में रहता है कोढ़ का रोग। सावधान मंदु सावधान, हम सोच रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा अगर हम करेंगे ऐसा। तो इस प्रकार अद्वैत आचार्य जो है वो आप जानते हैं कि वो खूब प्रीचिंग कर चुके थे विश्वरूप को, विश्वरूप उनके पास जाते थे। अद्वैत घा अद्वैत भवन जो बिल्कुल शिवास पंडित के बिल्कुल साथ में है, शिवास पंडित के घर के सामने, वहां अद्वैत आचार्य वहां पर भी रहते। वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद ही अद्वैत आचार्य पूरी तरह से शांतिपुर में रहे थे। शांतिपुर में वो बहुत कम समय के लिए रहे, लेकिन जब तक चैतन्य महापुरुष निमाई के रूप में जब लीला कर रहे थे, अपनी आदि लीलाएं कर रहे थे नवद्वीप में, तो अधिक से अधिक समय अद्वैत आचार्य ने नवद्वीप में ही बिताया। वो अद्वैत भवन जो है और वहीं पे जो है शालिग्राम शिला की सेवा पूजा की, गंगा जल अर्पित किया, तुलसी दल इत्यादि अर्पित किया। तो अद्वैत आचार्य के घर प्रत्येक दिन विश्वरूप जाया करते थे कथा सुनने के लिए, चैतन्य महापुरुष के बड़े भाई। कृष्ण कथा सुनकर बड़ा आनंद आता था उनको, और रोज चले जाते थे, यहां तक कि प्रसाद की भी चिंता नहीं होती थी। फिर निमाई जाकर उनको पकड़ के वापस लाते थे। शची माँ बोलती कि आप जाओ, और जब निमाई पहुंचते निमाई इतने सुंदर लगते थे देखने में, उनके माथे पर कस्तूरी तिलक होता था, क्या सुंदर उनके केश होते थे, और गौरांग रंग के यानी तप्त कांचन गौरांग, और सुंदर श्रृंगार किया है शची माँ ने, उनके बालों को इतना सुंदर ढंग से संवारा है, और उसमें भी फूल लगे हुए हैं। निमाई इतने सुंदर दिखाई पड़ते थे जब निमाए जाते, तो अद्वैत आचार्य और जितने और भक्त वहां बैठे थे वो सब देखकर दंग रह जाते थे, वो निमाए को देखते रहते थे। फिर विश्वरूप को बोलते हैं, चलो आपको शची माँ बुला रही है, प्रसाद का समय हो गया है। तो अद्वैत आचार्य की प्रीचिंग से, उनके संग से विश्वरूप इतनी विरक्ति आ गई कि रातों रात निकल गए संन्यास ले लेंगे। शची माँ थे, दुख नहीं सहा गया, उनसे विरह सहा नहीं गया। शची माता बहुत ज्यादा प्रेम के कारण जो है विरह महसूस कर रही थी, और उन्होंने सोचा, क्या सोचा, ये रोज अद्वैत आचार्य के पास जाता था, उनका संग करता था, और इसी कारण से मुझे लगता है कि इसको संन्यास लेना पड़ा। तो इस तरह से उनके मन में ऐसा विचार आया, क्यों, उनका प्रेम था विश्व रूप से, इस कारण से प्रेम के कारण जो है इस प्रकार के विचार आता है। तो ये तो बहुत अच्छा है कि विश्व रूप के लिए या चैतन्य महाप्रभु अगर आसक्त हो जाएं और किसी के कारण जो है चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के चले जाएं, तो आपको कैसा लगेगा बताइए, सच बताइए, आपको ठीक लगेगा बताइए, विश्वरूप आपको छोड़ के चले जाएं। अभी आपको नहीं लग रहा है, लेकिन उस लेवल में बता रहे हैं, जब पहुंचेंगे आप तो उस समय क्या ठीक लगेगा आपको, किसको ठीक लगेगा बताइए। चलिए आप इसको समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये एग्जाम्पल हमारे लिए लागू नहीं होता है। मान लीजिए आपके घर में बहुत आपके पास सुंदर गाड़ी है, वो बड़ा प्रेम है आपको गाड़ी से। अब देखिए कहां से कहां लाना पड़ता है एग्जाम्पल को समझने के लिए, है ना। बहुत सुंदर गाड़ी है या बहुत सुंदर साड़ी है आपके पास, तो ये साड़ी आपका कोई उठा के ले जाता है या गाड़ी को कोई उठा के ले जाता है, घर में नई रोल्स रॉयस आई है, तो फिर आपका क्या विचार होगा बताइए, आपको विरह होगा कि नहीं होगा, बहुत विरह होगा, आप क्रोधित हो जाएंगे, और जिस व्यक्ति ने उठाया उसको आप पता नहीं क्या क्या गाली देंगे। तो इस तरह का जब प्रेम होता है जब कृष्ण के लिए, श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए, तो एक क्षण भी विरह नहीं सहन कर सकता है भक्त जो भगवान का अवतार। तो शची माँ है जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु की माता है, जिनके गर्भ से श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं, है ना। शची माता का सौभाग्य देखिए आप। तो इस प्रकार से उनके मन में विचार आया, श्री चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला कर रहे थे हमने बताया जैसे, तो चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला में सभी भक्तों को कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे थे। अनेक भक्त जो यहां पर आए हुए थे, लाइन लगी हुई थी, बहुत लंबी कतार लगी हुई थी, सबको कृष्ण प्रेम दिया जा रहा था होलसेल में। शची माता का जब नंबर आया तो शची माता के लिए चैतन्य महाप्रभु चुप रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं शची माँ को, अपनी माँ को जो है कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा। उन्होंने अद्वैत आचार्य के चरण में अपराध किया है और जब तक अद्वैत आचार्य के चरण की धूलि अपने मस्तक पर नहीं लगा लेती हैं तब तक मैं उनको क्षमा नहीं कर सकता, उनको कृष्ण प्रेम नहीं दे सकता मैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसा जब बोले तो भक्त लोग सब चिंतित हो गए। ये तो जगत माता है, इनको भी जन्म देने वाली है, लेकिन आज शची माता को ही कृष्ण प्रेम नहीं देंगे, ये कैसे हो सकता है? तो अद्वैत आचार्य के पास गए ये बात बताने के लिए। तो अद्वैत आचार्य बोले, ये क्या बात सुन रहा हूं मैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने मस्तक को सर्प दीवार पर फोड़ लूं? ये बात सुनने से पहले आप लोग मुझे ये आके बता रहे हो कि शची माता जो है मेरे चरणों की धूली लेंगी, मुझे उनके चरणों की धूली लेनी चाहिए। शची माता जगत माता है, साक्षात यशोदा मई है, गंगा देवी है, उनके चरणों की धूली मुझे लेनी चाहिए। आप कैसे ऐसे सोच सकते हैं? अद्वैत आचार्य इस प्रकार से अपना भाव प्रकट कर रहे थे और इस प्रकार जब उन्होंने गुणगान किया, अद्वैत आचार्य शची माँ का गुणगान किया, कहते कहते क्या हुआ, अद्वैत आचार्य जो है भाव वेश में वहीं मूर्छित हो गए। जब मूर्छित हुए, अद्वैत आचार्य मूर्छित हुए, तो शची माता ने सोचा यही मौका है, चरण धूली लिए अपने मस्तक पर लगा लिया, हरी हरी। और इसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद सभी भक्तगण बड़े खुश हुए और शची माता को श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आज इनका सारा अपराध क्षमा हो गया है, अपराध से मुक्त हो गई है, अब मैं शची माँ को भी कृष्ण प्रेम दूंगा, हरि हरि। तो इस प्रकार शची माता जो है वो उनको कृष्ण प्रेम प्रदान किया श्री चैतन्य महाप्रभु। वैसे तो कृष्ण प्रेम से वैसी भरी हुई है, लेकिन ये लीला है श्री चैतन्य महाप्रभु हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि हमें वैष्णव अपराध से सदैव बच के रहना चाहिए। तो इस प्रकार शिवास पंडित के घर में बहुत सारी लीलाएं हुई। व्यास पूजा का दिन आया, व्यास पूर्णिमा का दिन आया और व्यास पूर्णिमा के दिन, व्यास पूर्णिमा के एक दिन पहले श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो भाववेश में आ गए थे और भाववेश में आकर वो बोल रहे थे, कहां है हल, कहां है मूसल, बलराम जी के भाव में आ गए थे, लाओ लाओ वारुणी लाओ। सब भक्तों सोच रहे कि वारुणी क्यों पूछ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे क्या चक्कर है, अब वारुणी लाए कहां से, भाववेश में आ गए चैतन्य महाप्रभु, भाववेश में आ गए और ठीक है गंगा जल ही लिया, गंगा जल पी गए चैतन्य महाप्रभु, बलराम जी के भाव में आ गए हैं, बलराम जी के आवेश में आ गए हैं, हल मंगवा रहे हैं, मूसल मंगवा रहे हैं, वारुणी मंगवा रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, भाववेश में है चैतन्य महाप्रभु। और इतने में नित्यानंद प्रभु जो है बड़ी तेजी से भाग जाते हैं, गंगा जी में कूद जाते हैं, फिर नित्यानंद प्रभु को गंगा जी से वापस लेके आना पड़ता है ना। तो बड़ी अद्भुत लीला है सारी, लेकिन बाद में फिर बताया जाता है नित्यानंद प्रभु की कल व्यास पूजा है उसकी तैयारी करनी है। तो शिवास पंडित से कहा जाता है कि कल व्यास पूजा है तो कैसी व्यवस्था कैसे करोगे आप बताओ। तो शिवास पंडित ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सारी व्यवस्था हो जाएगी, मुझे सिर्फ वो किताब लेनी पड़ेगी एक जिसमें व्यास पूजा कैसे मनाई जाती है उसकी विधि दी गई है, सारी व्यवस्था हो जाएगी, आप चिंता मत करिए, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। और इस तरह से जो है अगले दिन व्यास पूजा महोत्सव मनाया गया और व्यास पूजा महोत्सव जब मनाया गया तो नित्यानंद प्रभु को शिवास पंडित माला देते हैं पहनाने के लिए, क्या श्रील व्यास जी को माला पहनाइए। नित्यानंद प्रभु हाथ में माला लेके एकदम स्तब्ध से हो जाते हैं, बोलते कि प्रभु आप माला बनाए, प्रभु आप माला बनाइए। नित्यानंद प्रभु सोच में पड़ जाते हैं, वो देखते रहते हैं, माला पकड़ के खड़े रहते हैं, फिर वो सोचे क्या करूं मैं, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के गले में माला डाल देते हैं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु को जब देखते हैं तो स्वयं अपने को देखते हैं, बलराम जी के रूप में आप खुद को देखते हैं। तो भक्तों को तब पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार जो है एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसी शिवास पंडित के घर पे अपना षडभुज रूप दिखाया। षडभुज रूप में क्या था, शंख चक्र गदा पद्म मूसल और छड़ी, इस षडभुज रूप को दिखाया उन्होंने शिवास पंडित के घर में। और ये जो षट प्रहर लीला, षट प्रहर लीला जिसको महाप्रकाश लीला भी कहते हैं, 21 घंटे की जो लीला हुई वहां पर लगातार, 21 घंटे के लिए लगातार श्री चैतन्य महाप्रभु जो है कृपा बरसा रहे थे सभी भक्तों के ऊपर लगातार। तो एक दिन क्या हुआ, शिवास ठाकुर से श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रार्थना की, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप बृहद विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण करें। तो ऐसा जब कहा तो श्रीवास पंडित बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण किया और जैसे उसमें नरसिंह भगवान का नाम आया, श्री चैतन्य महाप्रभु इतने क्रोधित हो गए, भाववेश में नरसिंह आवेश में चारों तरफ भागने लगे, कहां है मैं मार डालूंगा। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जो भाववेश भागे जा रहे हैं नवदीप की सड़कों में, कहां है गदा, एक एक को, एक एक नास्तिक को, एक एक असुर को मैं मार डालू। ऐसे नरसिंह भगवान के आवेश में जो चैतन्य महाप्रभु अपने केश को खोले हुए, आंखें लाल हो रही हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु भागे जा रहे हैं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि नवदीप के लोग जो हैं सब लोग घबरा रहे हैं, भक्त लोग भी डर गए हैं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो शांत हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने अपने को संभाल लिया और उन्होंने भारी सुदबुद्ध को रोका और श्री चैतन्य महाप्रभु वापस आ गए और विष्णु सिंहासन में आके बैठ गए। उन्होंने कहा, श्रीवास देखो आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मेरे कारण मैंने जो है इतने लोगों को मैंने भयभीत कर दिया, मैं अपने आप को काबू में नहीं कर पाया था। फिर श्रीवास पंडित कहते हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं निमाई, आपके पवित्र नामों का उच्चारण करने मात्र सही 1 करोड़ अपराध क्षमा हो जाते हैं, यानी करोड़ों करोड़ों अपराध क्षमा हो जाते हैं और आपके हिसाब से कभी अपराध हो ही नहीं सकता है। जिसने भी आपका दर्शन किया, इस आवेश में आवेश का रूप देखा, जिसने भी उन सब का उद्धार हो जाएगा, वो सब भावसागर को पार कर जाएंगे। हरी हरी प्रसन्नता प्रकट करें हम लोग गौर लीला का श्रवण करते हुए, इसी में आनंद है। तो इस प्रकार श्रीवास पंडित जो हैं अपने चार भाइयों के साथ रह रहे। श्रीवास पंडित चार भाई थे लेकिन बड़े भाई भी थे नलिन पंडित। नलिन पंडित की जो बेटी है नारायणी, उन्हीं के सुपुत्र हुए श्रील वृंदावन दास ठाकुर। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास पंडित के घर में स्वयं अपना उच्चिष्ट महाप्रसाद जो है नारायणी को दिया था और नारायणी को देखते ही गदगद हो गई और नारायणी गदगद होकर भाववेश में संकीर्तन करने लगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ब्रह्मचारी वहां पहुंचा श्रीवास पंडित के घर पे पहुंचा ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी दूध पीकर अपना जीवन निर्वाह करता, देसी गाय का दूध पीता था वो, इंडियन काउ ब्रीड मिल्क, तो दूध पीकर जीवन निर्वाह करता था, कुछ फल भी खा लेता कभी कभी, बहुत तपस्या की उसने अपने जीवन में। श्रीवास पंडित के घर के बाहर पहुंचा और श्रीवास पंडित से आग्रह किया कि चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन नृत्य चल रहा है, मैं देखना चाहता हूं। श्रीवास पंडित ने कहा कि यह संभव नहीं है, चैतन्य महाप्रभु उसकी अनुमति नहीं देंगे। तो ब्रह्मचारी ने बार बार प्रार्थना की, देखिए ऐसा है, मैंने तपस्या की है और मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा हूं, कृपा करके आपसे तेरी प्रार्थना है, मुझे आप भीतर आने दे, मैं देखना चाहता हूं महाप्रभु का संकीर्तन, उनका नृत्य देखना चाहता हूं। तो इस प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे, तो अचानक उन्होंने कहा कि देखिए आज मुझे इतना आनंद नहीं आ रहा है, क्या बात है, कौन है यहां पर, कोई है यहां पर, कोई छुप कर देख रहा है, सुभाष कौन है यहां पर जो छुप के देख रहा है। श्रीवास पंडित घबरा गए। श्रीवास पंडित ने कहा कि महाप्रभु ये घर के भीतर एक व्यक्ति छुपा है, ब्रह्मचारी छुपा है, वो आपका संकीर्तन देखना चाहता है, आपका नृत्य देखना चाहता है, आप उसकी अनुमति दे दें। वो ब्रह्मचारी है, दूध पीकर जीवन निर्वाह करता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा उसको अभी तुरंत निकालो उसको यहां से बाहर करो उसको, दूध पीकर जो है यहां पर वो प्रदूषण फैला रहा है, मैं नहीं चाहता हूं वातावरण को प्रदूषित करे दूध पीकर, हमें ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, निकालो उसको बाहर। तो इस प्रकार दूध पीकर कोई जो है कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है क्या, ये कौन से शास्त्र में लिखा है, उसको निकालो। तो खुश से नृत्य तो देख ही लिया, छुपके से संकीर्तन भी देख लिया, ब्रह्मचारी बाहर आया, बड़ा खुश हुआ, जो भी हो महाप्रभु निकाला मुझे बाहर, लेकिन मैंने देख तो लिया, बड़ा आनंद आ गया आज, क्या अद्भुत दृश्य था, महाप्रभु का संकीर्तन करते हुए नृत्य करते हुए देख रहा था, बड़ा आनंद आया। तो इतने में चैतन्य महाप्रभु समझ गया, रहे तो चला ही गया। चैतन्य महाप्रभु हृदय में करुणा आ गई, उसने ब्रह्मचारी को वापस बुलाया, देखो ब्रह्मचारी ध्यान से सुनो, अगर कुत्ता खाने वाला भी मेरी शरण ले लेता है, पूरी शरण ले लेता है, तो उसको मैं कृष्ण प्रेम दे सकता हूं, लेकिन कोई वैरागी है, सन्यासी है, कोई अगर वैरागी है, कोई सन्यासी है, अगर वो समर्पित नहीं है मेरी सेवा में तो उसको मैं कृपा नहीं दूंगा। लेकिन मैं एक चंडाल को दे सकता हूं कृष्ण प्रेम, अगर वो चंडाल जो है समर्पित भाव से मेरी सेवा करता है तो। इसलिए ये ना सोचो कि दूध पीकर तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की बात सुनी, वो ब्रह्मचारी जो है वो बहुत नम्र हो गया और महाप्रभु की शरण ली। इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्रह्मचारी को अनुमति दे दी संकीर्तन में भाग लेने के। हरि हरि। तो इस प्रकार कई लीलाएं हुई यहां पे। एक बार श्रीवास पंडित की सास वहां पर छुप कर देख रही थी, है ना, घर के अंदर। तो चैतन्य महाप्रभु उनको अनुमति नहीं दी उनका बाहर करने को। तो इस प्रकार, लेकिन एक जो है वृद्ध औरत थी दुखी, उनका नाम था दुखी, वैसे दुखी नहीं थी वो दुखी थी। वो रोज जो है गंगा जल लेकर आती थी और बहुत सुंदर तरीके से घड़ों को जो है कतारों में रखती थी। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, ये कौन है? देखिए कैसे दृष्टि पड़ती है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसे मिलती है। अगर नम्र भाव से हम सेवा करेंगे, टॉयलेट साफ करेंगे, बर्तन धोएंगे, नम्र सेवा करेंगे, भक्तों की चरण धूली लेंगे, मिनियल सर्विस करेंगे, विनम्र भाव से, अहंकार के भाव से नहीं कि देखो मैं टॉयलेट साफ कर रहा हूं, है ना, नम्रतापूर्वक हम कोई भी सेवा करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि निश्चित रूप से हमारे ऊपर पड़ेगी। हरि हरि। तो चैतन्य महाप्रभु जब देखा कि दुखी जो है इतनी नम्रता से जो है सेवा कर रही है, चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि पड़ गई, कृपा दृष्टि, इसको कहते हैं कृपा शक्ति। चैतन्य महाप्रभु ने कृपा दिखाई उनके ऊपर। दुखी इसका नाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका नाम क्या होना चाहिए? सुखी। आज से तुम्हारा नाम दुखी नहीं है, आज से तुम्हारा नाम सुखी है। हरि हरि। इस प्रकार से दुखी जो है वो सुखी बन गई। तो इस प्रकार कई सारी लीलाएं हुई। और एक तो ये सब जो है शिवास पंडित के घर में ये सारी लीलाएं हुई। और हम सब इस शिवास पंडित के घर में जब जाते हैं तो इन सभी लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं और हम सभी लाभान्वित हो सकते हैं और आशा कर सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि एक ना एक दिन हमें भी संकीर्तन लीला में भाग लेने का मौका मिले। कितने भक्त तैयार हैं बताइए इसके लिए? कितने भक्त चाहते हैं? तैयार होंगे बाद में, लेकिन कम से कम चाह तो होनी चाहिए पहले। पहले जब चाह होगी, जहां चाह है वहां पर राह है। अगर इच्छा नहीं की तो फिर योग्यता भी कैसे प्राप्त होगी? इच्छा तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम लोग सब प्रार्थना करेंगे एक दिन शिवास पंडित के घर में हम भी संकीर्तन लीला में भाग लें और वहां पर जाकर शिवास पंडित के घर में वो मीठे मधुर आम खाएं और जिसमें गुठली ना हो, जिसमें छिलके ना हो, नित्यधाम क्या आनंद आएगा बताइए। फिर आपको ये मैनेजमेंट से सब जो है मतलब सारा छुटकारा मिल जाएगा। कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस नाचते रहो लगातार। हरी हरी। 24 घंटे नृत्य करो, 24 घंटे संकीर्तन करो, क्या आनंद आएगा बताइए। लेकिन वो स्थान में जाने के लिए पापड़ बेलने पड़ेंगे, इतना आसान नहीं है। ये तो केवल एक पब्लिसिटी थी। तो इसलिए हम लोगों को इच्छा कर सकते हैं, लेकिन ये सोचना इच्छा कर लिए तो योग्यता भी प्राप्त हो गई, ये ठीक नहीं है। इसके लिए हमें भरपूर प्रयास करना पड़ेगा, कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार तो एक दिन क्या हुआ, शिवास पंडित, अच्छा ये तो नवदीप की लीलाएं हुई। अब क्या हुआ कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो है जगन्नाथपुरी चले गए थे। शिवास पंडित और अनेक भक्त जो वहां पर थे उनसे रहा नहीं गया। और रथयात्रा के समय अक्सर बंगाल से शिवानंद सेन के साथ 200 से अधिक भक्त आया करते थे और नवदीप के भी भक्त जो हैं वो जाते थे रथ यात्रा में भाग लेने के लिए और लगभग चतुर्मास से पूरा वहां पर बिताते थे। रथ यात्रा का बड़ा आनंद आता था जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी की लीलाएं अद्भुत हैं, बड़ा आनंद आता वहां की लीलाओं को सुनकर। और चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचे तो कुछ समय के बाद शिवास पंडित भी वहां पहुंच गए। चैतन्य महाप्रभु जानते हैं रथ यात्रा के समय उन्होंने 7 दल बनाए थे और इस 7 दलों में से एक दल जो है वो शिवास ठाकुर का भी था। चैतन्य शिवास पंडित जो है बहुत अच्छे गायक भी थे तो चीफ सिंगर थे और उनके दल में जो है नित्यानंद प्रभु नर्तक थे। कौन कौन थे उनके ग्रुप में? गंगादास पंडित, हरिदास, श्रीमन, शुभानंद, शिवान पंडित, शुभानंद ब्रह्मचारी, श्रीराम पंडित, नित्यानंद प्रभु उनके मुख्य नर्तक थे। तो इस प्रकार से ये जगन्नाथपुरी में रथ के सामने सात दल थे और उसमें से एक दल जो है शिवास पंडित का था। तो कितना मतलब पंच तत्व जो थे उन सब के एक एक दल थे वहां पर। तो ये सब देखने के लिए सैकड़ों हजारों लाखों लोग वहां आते थे, पूरे ब्रह्मांड से भक्त वहां करते आते थे, रथ यात्रा में भागने लगे। क्या देखने के लिए? श्री चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन, उनका नृत्य देखने के लिए। कौन नहीं देखना चाहेगा? हरि हरि, गौर हरि, गौर हरि, गौर हरि। तो एक दिन क्या हुआ, शिवास पंडित चैतन्य महाप्रभु, वैसे तो लोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, सब लोग गौरंग महाप्रभु का नामों का कीर्तन करने लगे, उनका गुणगान करने लगे। जय शचिनंदन, जय शचिनंदन, जय शचिनंदन, जय शचिनंदन, जय शचिनंदन गौर हरि। चुप हो जाइए, ये किस तरह का कीर्तन है? मैंने ये शिक्षा दी आप लोगों को कि आप मेरे नामों का कीर्तन करो, मेरा गुणगान करो। कितनी गलत बात है, आप सबको हरि नाम लेना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करिए आप सब, ये जय शरीरन गौर हरि क्या लगा रखा है आपने। और चैतन्य महाप्रभु इस तरह से भक्तों को खूब डांटने लगे, खूब डांट लगाई भक्तों को। तो उन्होंने कहा कि चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्से में थे, बहुत क्रोधित हुए, और फिर भी भक्त लोग रुके नहीं। भक्तों ने कहा कि आप ही साक्षात ब्रजेंद्र कुमार हैं, आप ही नंद के पुत्र हैं, नंद महाराज के पुत्र हो, पुत्र हैं। सचिव श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। तो इस प्रकार से सभी भक्त जो हैं, सभी लोग, ये भी देखिए भावेश में आ गए माइक भी, तो सभी भक्त लोग जो है गौर हरि का कीर्तन कर रहे थे। चैतन्य महाप्रभु सोच रहे कि मैं क्या करूं, है ना, ये लोग सुन नहीं रहे मेरी बात को। तो इस प्रकार भक्त लोग बाहर जो खड़े थे, उन्होंने कहा कि देखिए महाप्रभु, हम सब बहुत दूर से आए हैं, बंगाल से आए हैं आपका दर्शन करने के लिए, कृपा करके हमारे पर आप दया दृष्टि दिखाएं, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का हृदय थोड़ा कोमल हुआ कि बाहर भक्त लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, अब चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का ठीक है, अब कितना मैं दिखाऊं बाहर से कि मैं सख्त हूं, चैतन्य महाप्रभु तो सख्त है ही नहीं, हृदय से बड़े कोमल हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बाहर आकर दर्शन देने लगे, और चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों को खड़ा किया और महाप्रभु जोर से चिल्लाया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिवास पंडित वहां खड़े थे, शिवास पंडित जो है सरकास्टिकली, मतलब उन्होंने क्या कहते हैं सरकास्टिक को, क्या कहते हैं, एक व्यंग प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि आप घर में तो छुपे हुए थे और बाहर आप सबके समक्ष आ गए हैं, अंदर तो आप छुपे हुए थे, इन लोगों को किसने सिखाया हुआ है, ये सब क्या कह रहे हैं, आप इनके मुंह को बंद क्यों नहीं करते हैं, ये तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि सूर्य उदय हो गया है, अब अपने आप को छुपाने का प्रयास कर रहा है, आप क्या अपने आप को छुपा सकते हैं। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जब बोले, चैतन्य महाप्रभु बोले कि श्रीवास तुम किस तरह की बातें क्यों कर रहे हो, है ना, ये सब भक्त लोग क्या कह रहे हैं, इस तरह से मेरे नामों का कीर्तन क्यों कर रहे हैं, मेरा गुणगान क्यों कर रहे हैं, इन सबको हरि नाम लेना चाहिए। तो इस प्रकार ये बहुत सुंदर लीला हुई। और एक बार की घटना है, चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा में संकीर्तन कर रहे थे और संकीर्तन को देखने के लिए दूर दूर से लोग आए थे, महाराज प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु के निकट खड़े थे और महाप्रभु का संकीर्तन देख रहे थे। तो ये हरिचंदन के कंधे पर हाथ रखा हुआ था, हरिचंदन उनके सेवक थे, उनके कंधे पर हाथ रखा हुआ था, और शिवास पंडित आगे आगे खड़े हुए। शिवास पंडित भावावेश में थे, भाव में थे, वो आगे से हट ही नहीं रहे थे। हरिचंदन ने देखा कि ये तो राजा के सामने आके खड़ा हो गया, ये तो अच्छी बात नहीं है, शिष्टाचार नहीं है। तो उन्होंने शिवास पंडित को हटाने का कोशिश किया, तो बार बार जब वो धक्का दे रहे थे उनको हटाने की कोशिश कर रहे थे, शिवास ठाकुर को गुस्सा आया, उन्हें पीछे हटाया, मार ठाड़ के पीछा। तो हरिचंद्र को क्या हुआ, अचानक बड़ा गुस्सा आया, और हरिचंद्र कुछ कहने ही वाले थे, गुस्से में आकर महाराज प्रताप ने रोक दिया, आज तुम्हारा सौभाग्य कि शिवास पंडित का हाथ तुम्हारे पर पड़ा है, एक शुद्ध भक्त की कृपा तुम्हारे ऊपर आई है, हो गई है, इसलिए तुम्हें क्रोधित होने का क्यों कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। इसी तरह से जब भक्त हमारे ऊपर क्रोधित होते हैं, भक्त हमें डांटते हैं, हमें खुश होना चाहिए, ये असली कृपा है। हमने सुना था एक बार एक महाराज से प्रवचन में, वो कह रहे थे अगर आप वैष्णव बनना चाहते हैं तो वैष्णव की डांट खाने के लिए तैयार होना पड़ेगा आपको। ये सबसे बड़ा रहस्य, इसलिए प्रभुपाद की डांट खा खा के सब लोग वैष्णव बन गए। हरी हरी, क्योंकि प्रभुपाद जब डांटते थे तो शरीर में कंपन होता था, और कंपन होते क्या होता था, सारे अनर्थ कट जाते थे। तो इस प्रकार से जो है कृपा की, और इस प्रकार हरिचंदन के ऊपर कृपा की श्रीवास ठाकुर ने, और इस तरह से एक और लीला हुई। हेरा पंचमी का उत्सव आया, हेरा पंचमी आप जानते हैं, पंचमी पांचवें दिन जो है वो लक्ष्मी जी निकलती हैं मंदिर से जगन्नाथ जी को वापस लाने के लिए। उनके की गुरु ने कहा था अगले दिन वापस आऊंगा, और अभी तक वापस नहीं आई, के बात है मजाक हो रहा है। तो लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है हम सब जाएंगे, तो अपनी दासियों को लेकर वो सब चली और पहुंची गुंडीचा मंदिर के पास, वहां जगन्नाथ जी का रथ खड़ा हुआ था। जगन्नाथ जी के सेवक बोले कि आप लोग कहां जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम जगन्नाथ जी को वापस लेने के लिए आए हैं, उनको वापस करो आप। तो शिवास पंडित जो है वहां पर खड़े थे, स्वरूप दामोदर को ये सब बता रहे थे कि हमारे लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य देखो। जहां तक वृंदावन की बात है, वृंदावन में तो लताएं पताएं हैं, झाड़ियां हैं, फूल हैं, मोर पंख है, ये सब है, गुंजा गुंजा के फूल हैं, पौधे हैं, और है क्या वृंदावन में? असली ऐश्वर्य तो लक्ष्मी जी का है, और ये क्या जगन्नाथ जी जो है इस ऐश्वर्य को छोड़कर यहां झाड़ियों में बैठे हुए, पेड़ के बीच में, जंगल में? उनको वापस करिए, हम ले जाना चाहते हैं उनको वापस। तो इसलिए जो है लक्ष्मी जी के जो सेविका थे उन्होंने रथ को पीटना शुरू किया, रथ को जोर जोर से मारना शुरू किया उन्होंने। तो इस प्रकार आगे क्या बता रहे हैं, तो इस प्रकार जब वर्णन किया कि गोपियां आपकी जो हैं वो क्या करती हैं, गोपियां तो दही मलती हैं, घी बनाती हैं और दूध ले जाती हैं, लेकिन हमारी लक्ष्मी जी देखिए रत्नों के सिंहासन में, सोने के सिंहासन में बैठती हैं। वहां की लक्ष्मी द्वारका की महिषियां, वैकुंठ की जो पत्नी, वैकुंठ की जो यानी कि लक्ष्मी है वो कितने ऐश्वर्य में रहती है, और आप ये राधारानी के बगीचे में रह रहे इन गोपियों के साथ जो झाड़ियों में रहती हैं, दूध बेचने वाली, दही बेचने वाली, मक्खन बेचने वाली, घी बेचने वाली। तो इस प्रकार नारद मुनि के भाव में तो श्रीवास ठाकुर जब ऐसा कह रहे थे तो श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपका स्वभाव तो नारद मुनि जैसा है, आप तो नारद मुनि के ही भाव यहां पर प्रकट कर रहे हैं। तो इस लेकिन जो स्वरूप दामोदर हैं वो स्वरूप दामोदर वृंदावन के भक्त हैं, वो कृष्ण के भक्त हैं, वो वृंदावन के शुद्ध भक्त हैं। तो स्वरूप दामोदर उत्तर दिया, मेरे प्रिय श्रीवास ध्यान से सुनो, आप वृंदावन के ऐश्वर्य को ठीक से नहीं समझ पाए हो। वृंदावन के ऐश्वर्य की तुलना में द्वारका का और वैकुंठ का ऐश्वर्य जो है ये तो रंच मात्र भी नहीं है, एक बूंद के समान भी नहीं है। आप वृंदावन के ऐश्वर्य से क्या तुलना कर रहे हो? श्री कृष्ण परम भगवान है, वहां चिंतामणि धाम है, कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष से सारी इच्छाएं जो है पूरी हो जाती हैं। वह कामधेनु गाय है, सुरभि गाय है, और वह असंख्य दूध देती है, मात्रा में दूध देती है, और वह चलना भी जो है नृत्य के समान है, वह बोलना भी जो है वो गाने के समान है। वृंदावन धाम के ऐश्वर्य को आप क्या समझो, वहां के माधुर्य को आप क्या समझो? तो इस प्रकार से वहां का जो जल भी है वो अमृत समान है, और ये जो वृंदावन की जो गोपियां हैं लक्ष्मी के ऐश्वर्य से कई बढ़कर है उनका ऐश्वर्य वृंदावन की गोपियां। ऐसी जो सहस्त्र गोपियां हैं, ऐसे सहस्त्र गोपियां जो है वो कृष्ण की सेवा में लगी हुई हैं, इसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार श्रीवास ठाकुर ने जब सुना तो श्रीवास ठाकुर जो है वो बड़े गदगद हो गए, भावावेश में आ गए, और अपने हाथों से अपने ही हाथ को पीटने लगे। इस तरह से जोर जोर से श्रीवास ठाकुर हंसते हुए बड़े प्रसन्न होते हुए इस तरह से श्रीवास ठाकुर जो है अपना भाव प्रकट कर रहे थे, वैकुंठ का भाव, ऐश्वर्य का भाव। इस तरह से श्रीवास पंडित के इस जीवन चरित्र से हम सीख सकते हैं कि हम लोग भी जो हैं अगर चाहें तो इन लीला में भाग ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जैसे बताया कि हमें बहुत बड़ा मोल चुकाना पड़ेगा, और उस मोल को चुकाने के लिए कुछ भी करना पड़े उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यत्कुतो भी लभ्यते तत्रपि लौल्यम एकलम मूल्यम कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते। लाखों करोड़ जन्मों की सुकृति से भी कृष्ण भक्ति रस प्राप्त नहीं हो सकती है, लेकिन अगर आप मूल्य चुका दें, कौन सा मूल्य? लौल्यम अपि एकलम मूल्यम, इस लौल्य वाला मूल्य चुका दें अगर, तो कृष्ण भक्ति रस को आप प्राप्त कर सकते हैं, गौरव महाप्रभु की लीला में प्रवेश कर सकते हैं, या शिवास आंगन के घर में आप संकीर्तन में भाग लेंगे, भक्तों के साथ नृत्य करेंगे, कितना आनंद आएगा। तो वहां पहुंचने के लिए यहां कुछ करना पड़ेगा, वहां पहुंचने के लिए यहां संकीर्तन करना पड़ेगा, लेकिन हम यहीं पर नृत्य नहीं करेंगे, यहीं पर नहीं गाएंगे, तो वहां जगह से कैसे गाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो ये एम्बेसीज बनाई है, ये इसलिए बनाया कि यहां रहकर हम अभ्यास कर सके संकीर्तन लीला का। ये संकीर्तन लीला जो है अभी भी चल रही है इस्कॉन के माध्यम से पूरे पृथ्वी में। चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन अभी भी बंद नहीं हुआ है, अभी भी जारी है। जो भाग्यशाली है वो संकीर्तन आंदोलन में भाग ले सकता है ना। गौरंगेरा संगी गने नित्य सिद्धा कोरी माने तारा हुए ब्रज भूमि वास। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं अगर मान भी ले कि ये सब नित्य सिद्ध हैं, गौरा महापुर के पार्षद कोई अगर स्वीकार भी कर ले तो निश्चित रूप से उसको ब्रज में वास मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आपको संशय है? किसको संशय बताइए? जिसको संशय है वो संशय में रहेगा। तो इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जिन्होंने गौरंग महाप्रभु की लीलाओं का रसास्वादन कर लिया है, जिन्होंने गौरंग महाप्रभु के लीलाओं का श्रवण कर लिया है, उसका आस्वादन कर रहे हैं वो भक्त, उनको निश्चित रूप से राधारानी की सेवा प्राप्त होगी, है ना। इसमें कोई संशय नहीं है। चेतन चंद्रावत में श्लोक संख्या 88 में प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ऐसा कह रहे हैं कि केवल महाप्रभु की शरण में रहने मात्र से ही, चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में रहने मात्र से ही, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को श्रवण करने मात्र से ही, उनकी लीलाओं का गुणगान करने मात्र से ही, उनकी लीलाओं के प्रति आकर्षण जागृत करने मात्र से ही, उनके पार्षदों के प्रति आकर्षण जागृत करने मात्र से ही, आप राधारानी आपको उसी समय तत्काल ब्रज में प्रवेश कराती है। राधारानी आपको ब्रज में वास देंगी अगर केवल आप गौरंग महाप्रभु की लीलाओं में आप आनंद लेते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है, ये विशेष कृपा है चैतन्य महाप्रभु की, ये केवल कलयुग में उपलब्ध है। आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम ता क्या है, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, बस इतना ही करना हमें, अगर इतना नहीं कर सकते तो फिर बहुत दिक्कत है। तो इसलिए हम सब जो है प्रयास करें, प्रभुपाद जी की कृपा से हमें अनमोल धन प्राप्त हुआ है संकीर्तन का, इसका पूरा पूरा हमें लाभ उठाना चाहिए और अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी का या कुछ कहना चाहें, कोई रुक्मिणी किसको? तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब बड़े ध्यानपूर्वक और धैर्य से यहां श्रवण कर रहे थे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, श्रील शिवास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, सब वेद भक्तवृंद की, गौर प्रेमंदे।